ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। महाभारत का एक प्रसंग हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि गुरु द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या सिखा रहे हैं सभी को, कौरवों को और पांडवों को। उन्होंने एक चिड़िया दिखाई और चिड़िया के नेत्र और उसकी बिंदु पर निशाना लगाने को कहा, राइट? सारे कौरव असफल हुए, अर्जुन को छोड़कर सारे पांडव भी असफल रहे। अर्जुन क्यों सफल हुए? लक्ष्य पर नजर थे। बाकी सबसे पूछा कि तुम्हारा निशाना क्यों नहीं लगा, तो आंसर क्या था? उनको चिड़िया के साथ साथ और सब चीजें भी दिखाई दे रही थी, पेड़ भी दिखाई दे रहा था, आसमां भी दिखाई दे रहा था, जमीन भी दिखाई दे रही थी, बाकी के आसपास की सब चीजें भी दिखाई दे रही थी और चिड़िया भी दिखाई दे रही थी, इसीलिए निशाना ठीक नहीं लगा और वो सफल नहीं हुए। अर्जुन को केवल पक्षी का नेत्र और नेत्र की बिंदु ही दिखाई दे रही थी, इसलिए वो सफल हुए। फ्लोरेंस चैडविक एक तैराक थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पहली बार पार किया। पहली बार जब वो तैर के पार करने जा रहे थे तो मौसम ठीक नहीं था, काफी लंबी यात्रा थी, सागर का पानी बहुत ठंडा था, लंबी यात्रा के बाद उन्हें थकान भी बहुत हो गई थी, मौसम ठीक नहीं था तो सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि और कितना मुझे तैरना है, थक के चूर हो गई थी। उन्होंने अपने कोच को कहा कि बस अब और मैं नहीं तैर सकते। उनके कोच ने कहा कि बस थोड़ी सी दूरी और है, तुम तैर लो। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं तैर सकती, मैं बिल्कुल थक गए हूं। बल्कि बहुत थोड़ी सी दूरी तैर करनी बाकी थी लेकिन मौसम ठीक नहीं था तो उन्हें तट दिखाई नहीं दे रहा था जहां तक उन्हें पहुंचना था। दूसरी बार फिर से उन्हें अटेम्प्ट किया, इस बार मौसम पूरी तरह साफ था, कंडीशन वही मतलब दूरी ही उतनी, ठंडा पानी, थक के फिर से चूर, लेकिन मौसम साफ था, सामने तट दिखाई दे रहा था। क्या हुआ होगा? इस थकान ने उन्हें थकाया नहीं, लेकिन वो तैर के वहां तक पहुंची और विजयी हुई। ये दोनों जो प्रसंग मैंने आपके सामने रखे वो बहुत कुछ बयां करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। आज हम लोगों को थोड़ा सा गहराई से अपने आप को देखना है और एक यात्रा पे चलना है। क्या कहते हैं ये दोनों प्रसंग? एक तो यदि लक्ष्य स्पष्ट है, मुझे लक्ष्य दिखाई दे रहा है अपना, तो मैं कभी भी थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, गिव अप नहीं करूंगा। और यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो मैं थक जाऊंगा, हार जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अब समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। जीवन का जो आनंद है, जो उत्सव है, उत्साह है, वो चीज अब मेरे साथ नहीं रही है। क्यों? लक्ष्य स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, हम असफल क्यों हो रहे हैं पुरुषार्थ में भी? ब्राह्मण जीवन के साथ जोड़ें, क्यों पुरुषार्थ में असफलता, या फिर क्यों हमें जीवन में अन्य बातें बाधा के रूप में दिखाई दे रही हैं? अर्जुन की तरह केवल पक्षी का नेत्र नहीं दिख रहा है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी हैं। चेक करेंगे, अपने ऊपर चेक करेंगे कि क्या केवल पक्षी का नेत्र दिख रहा है हम, या उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी हैं। दिखाई देंगी तो जितना हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीर भले चलाएंगे, पुरुषार्थ के तीर तो हम चला ही रहे हैं रोज, लेकिन निशाने पे तब लगेगा जब केवल नेत्र दिखाई दे रही होगी, राइट? बाबा कहते हैं तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति धाम, एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम। क्या यही हमारी दोनों आंखों में है या इसके अलावा आंख में और भी कुछ है? हम और कुछ चीजें देखने लगे हैं। बाबा कहते हैं आंखें तुम्हें मिली हुई है आत्मा को देखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम को देखने के लिए। कहीं ये आंखें कुछ और तो नहीं देख रही, और यदि देख रही हैं तो थकान होगी। देख रही हैं तो हम थक के बैठेंगे, भटकेंगे। और यदि आंखों में केवल यही है जो बाबा ने कहा है, तो फिर जीवन में उमंग उत्साह बना रहेगा। दादी जानकी जी कितने प्रेरक है ना हम सबके लिए, हम सबके लिए नहीं सारे विश्व के लिए। वो हमेशा एक बात कहती हैं कि मैं जब से बाबा के पास आई हूं एक दिन के लिए भी ये नहीं भूली हूं कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं। एक दिन के लिए भी नहीं भूली कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूं और मुझे क्या करना है। क्या है ये? स्पष्ट लक्ष्य, क्यों आई हूं बाबा के पास और क्या करना है। और इस स्पष्ट लक्ष्य ने आज दादी को सारी संसार की जानकी बनाते हैं, सबके जानकी की है दादी, राइट? बाबा की गद्दी पे तो है ही, हम सब ब्राह्मणों के लिए तो प्रातः स्मरणीय है, आदर्श है, अनुकरणीय है, लेकिन सारी संसार के लिए भी। एजुकेशन के तौर पे देखा जाए तो सामान्य सा है एजुकेशन, लेकिन सारे संसार के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष दादी के सामने झुकते हैं। क्यों? स्पष्ट लक्ष्य। जब हम सब समर्पित हो रहे थे तो बड़ी दादी जी बार बार हम लोगों से लिखवाते थे, बार बार कि लिखो कि क्यों समर्पित होना चाहते हो। और उस चीज ने स्पष्ट किया कि क्या ध्येय होना चाहिए जीवन का। क्या हम सबको बिल्कुल क्लियर है ये लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य लेके बाबा के पास आए हैं? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा लक्ष्य ही ये निर्धारित करता है कि हम कहां पहुंचेंगे, हमारे जीवन की दिशा दशा इसे निर्धारित करने वाला हमारा ध्येय ही है, हमारा लक्ष्य ही है। क्यों हूं मैं इस संसार में, क्यों हूं मैं इस ब्राह्मण संसार में, आखिर मुझे जाना कहां है? लौकिक में भी लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आप अपने घर से जब निकलते हैं, आप खुद भी देखो, जब भी आप सुबह आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको पता तो होता है ना कि आप घर से क्यों निकल रहे हो, आपको कहां जाना है, आपको बाजार जाना है, आपको दफ्तर जाना है, आपको दूसरे शहर जाना है, आपको अपने किसी संबंधी के यहां जाना है, आपको पता होता है या नहीं होता? आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है, बस में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, टैक्सी आपको हायर करनी है, आपको पता होता है कहां से कहां जाना है, होता है या नहीं होता? यदि एक नाविक है, सागर में नाव चला रहा है, अब उसे पता ही नहीं है उसको कहां जाना है, तो उसके नाव की क्या हालत होगी? कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा और सागर की थपेड़े उस नाव को नष्ट कर देंगे। अब सेम चीज अपने इस ब्राह्मण जीवन के साथ जोड़ें। हम इस ब्राह्मण जीवन में हैं, बाबा के बन गए हैं, हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने हमें ये सुंदर जीवन दिया है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद क्या अपना लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट रहता है मेरे सामने कि क्यों बना हूं और बाबा ने क्यों मुझे चुना है? स्पष्ट है, क्योंकि जितनी स्पष्टता होगी तो बाबा के महावाक्य हैं, जैसा लक्ष्य वैसे लक्ष्य। यदि लक्षण नहीं आ रहे हैं मेरे अंदर, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, हम चले जा रहे हैं, लक्षण यदि नहीं आ रहे हैं, अब तक वो कमियां और कमजोरियां दूर नहीं हो रही हैं, तो क्या स्पष्ट होता है इससे? हम घर में बैठे हुए हैं और सचमुच हमें इस विषय पे सोचना है, विचार करना है, क्योंकि वक्त बीता जा रहा है ना, समय बीता जा रहा है। और बाबा हमेशा कहते हैं वक्त जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड जितनी तेज है, क्या वैसी स्पीड मेरे पुरुषार्थ की है? अब तक यदि वही छोटी छोटी चीजें मेरे साथ बनी हुई हैं, जो कमजोरी 5 साल पहले 10 साल पहले थी, वही चीज अभी भी मुझे परेशान कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे ना? शायद मैं सिंसियर नहीं हूं या मैं कमिटेड नहीं हूं अपने उस ध्येय के लिए, स्पष्ट नहीं है मुझे। इसलिए जरूर बैठेंगे, मधुबन में आप सब हैं, बैठेंगे और जरूर गहराई से इस पे विचार करेंगे कि क्या सचमुच मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, स्पष्ट है ये लक्ष्य जो मैंने बनाया है। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया और उन्होंने ये पाया कि केवल 3% विद्यार्थी थे जिनके पास लिखित में उनका लक्ष्य था कि अपने जीवन में मुझे ये करना है। 20% के पास मन में था कि हाँ हम अपने जीवन में ये करेंगे, बाकी के जो थे उनके पास कोई ध्येय नहीं था। 20 साल के बाद फिर से उनको ढूंढा गया कि कहां है वो सारे विद्यार्थी जिनके ऊपर सर्वे किया गया था, जिन 3% ने लिख करके अपना लक्ष्य स्पष्ट रखा था कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, वो संसार के टॉप लेवल में थे, हर फील्ड में वो टॉप पे थे। बाकी के जो सेकेंड लेवल थे वो मध्यम जीवन जी रहे थे, और जिनके जीवन का कोई ध्येय नहीं था वो सब कोई सब्जी बेच रहा था, कोई पंचर बना रहा था, कोई टैक्सी चला रहा था, निम्न जीवन लक्ष्य। लौकिक में भी इस चीज को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, और हमारी साथ तो पूरी कल्प की बात है। हम अपने सारे कल्प को कैसा देखना चाहते हैं, महाराजा महारानी बनना चाहते हैं ना, बनना चाहते हैं कि नहीं? लक्ष्य क्या है हमारा, क्या ध्येय लिया है माताओं ने, क्या बनना है? कुछ बनना तो है ना, आप घबराएं नहीं, आपकी आवाज बंद हो गई है लेकिन हम सब हमेशा बोलते तो हैं वो ना, जो हमारा लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? लक्ष्मी बनना, नारायण बनना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण हमारा ध्येय है, संपूर्णता हमारा ध्येय है, बाप समान बनना हमारा ध्येय है। लेकिन एक चीज लौकिक में भी कही जाती है जिस पे आप सब विचार कीजिएगा कि लक्ष्य और इच्छा में अंतर है। इच्छा वो है कि मुझे ये बनना है, हर एक अच्छा चाहता है ना अपने लिए कि मेरे पास बहुत अच्छा मकान हो, हर सुख सुविधा के साधन हो, संबंधी बहुत अच्छे हो, जीवन में कोई तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, राइट? ये मेरी इच्छा है। या मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मेरी इच्छा, ये इच्छा तब तक है जब तक उसके साथ प्लानिंग नहीं है। इच्छा लक्ष्य तब है जब उसके साथ एक प्लानिंग है, और हम सब भी ये करते हैं। आज मैंने आपको यही कहा कि हम सब मिलके थोड़ा विचार करें, आप सब अपने आप को देखना, हम सब अपने आप को देखें, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे नारायण के समान बनना है, लक्ष्मी के समान बनना है, या बाप समान बनना है, या संपूर्ण बनना है, ऐसा बनने के लिए मेरे पास क्या प्लान है, क्या प्लानिंग है, मैं क्या करूंगा, कैसे मैं ऐसा बनूंगा? ऐसे ही तो नहीं बन जाऊंगा ना, बाबा कोई छड़ी घुमा देंगे और मैं बन जाऊंगा, ऐसा है? या वक्त आएगा और मैं बन जाऊंगा, ऐसा है? कोई मिरेकल हो जाएगा मैं बन जाऊंगा, ऐसा है? नहीं, यहां ऐसा कतई नहीं। ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, और बाबा कहते हैं कि यहां तुम्हें पढ़ना है, परिश्रम करना है। जो जितना करेगा उतना पाएगा। मैं यदि किसी को दे दूं तो दूसरे कहेंगे कि क्या है, आपने तो पार्शियलिटी की, इसको दे दिया इससे आपका ज्यादा प्यारा, इसको नहीं दिया, मधुबन वाले समर्पित है, इनको आपने बहुत आगे कर दिया, हमको नहीं दिया, ऐसा तो नहीं। बाबा ये मौका कहने का किसी को नहीं देंगे, यहां हमें करना है। तो यदि आप ये कहते हैं कि मुझे ये बनना है, तो प्लान क्या है, कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक प्लानिंग नहीं है तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं है, जब तक प्लानिंग नहीं है तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। और प्लानिंग क्या, मान लो मुझे बाबा के जैसा बनना है, कैसे बनूं उसको स्टेप बाय स्टेप। यदि मुझे शिखर पर पहुंचना है तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी ना। बाबा अपनी मुरलियों में कितनी सारी चीजें कहते हैं, तुम्हारी स्मृति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा बोल, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमें स्पष्ट है या नहीं है? है ना? उन्हें अपने प्लान में शामिल करें। श्रेष्ठ स्मृति, मेरी सकारात्मक वृत्ति, मेरी शुद्ध दृष्टि, मेरा श्रेष्ठ व्यवहार, और बाबा की हर चीज, चाहे वो सुबह से रात तक की है, उस दिनचर्या का पालन कैसे मैं करूं? चीजें स्पष्ट हैं, कैसे मैं उसे अपने जीवन में लाऊं, ये हमें करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें ये भी है, जो शायद हम कई बार भूल जाते हैं, कहा जाता है आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट अर्थात स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, ये सब चीजें हमारी गोल के साथ हैं, जो हम कह रहे हैं कि हमें संपूर्ण बनना है। दुनिया वालों को शायद ये रियलिस्टिक ना लगे कि भगवान के समान बनना या लक्ष्मी नारायण के समान बनना, ये इनका गोल रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये रियलिस्टिक है, हम जानते हैं। लेकिन लास्ट बात जो है उस पर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं, टी अर्थात टाइम बाउंड। हर एक लक्ष्य के साथ एक समय निर्धारित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप समय निर्धारित नहीं करते तब तक आपके अंदर तीव्रता नहीं आती, तब तक आपको पता नहीं होता कि कब तक ये करना है। पता तो होना चाहिए ना कि ये कार्य है और आपको इतने दिन में करना है, तभी तो आप उसके लिए जागरूक होंगे। और यदि टाइम का ही पता ना हो कि कब तक करना है, मुझे बाबा के जैसा बनना है, कब बनेंगे, कब बनेंगे? बाबा लंबे समय तक बोलते रहे हैं, बच्चे डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। अब बाबा नहीं बोलते, लेकिन लंबे समय से बाबा ये बोलते रहे हैं। और बाबा ने यह भी कहा कि चलो सामूहिक रूप से ये डेट फिक्स नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत अपने लिए तो डेट फिक्स किया जा सकता है ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अपने लिए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कर सकते हैं ना भाइयों, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? मुझे इतने समय में अपने लक्ष्य को हासिल करना है, कितना समय चाहिए ये बताएं। संपूर्ण यदि बनना है, बाबा आने वाले हैं, चलिए हम सामूहिक रूप से मधुबन की तरफ से एक सुंदर सा लिखित में ना सही संकल्प से ही एक संकल्प बाबा तक पहुंचाएं कि बाबा हम इतने समय में आपके जैसे बन जाएंगे, या आपने जो लक्ष्य दिया है उसे हम प्राप्त करेंगे। कुमुद बहन, कोई समय फिक्स कर सकते हैं सामूहिक ना व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जरूर बैठे इस पे। बाबा के साथ रोहरीहान हो रही थी कुछ समय पहले, तो बाबा से एक बहुत सुंदर प्रेरणा आई। बाबा ने कहा पूरे 5000 वर्ष तुम्हारे, केवल तुम अपने 5 वर्ष पूरी तरह मुझे दे दो। 5 वर्ष, इस 5 साल में मैं तुम्हें वो बनाऊं जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, और तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो, तुम वो करो जो बाबा तुम्हें करने को कहते हैं। एज इट इज, सुबह से लेकर रात तक हर चीज जो बाबा की श्रीमत है, क्या 5 साल पूरी तरह ऐसा बाबा को दिया जा सकता है? 5000 साल हमारे, थोड़ा विचार करें, पूरे 5000 साल कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपको जहां जाना है, जो खाना है, जो पीना है, जैसे रहना है आप रहें, आप फ्री हैं। केवल 5 साल क्या भगवान को दे सकते हैं? इतना गहरा सन्नाटा क्यों? हमने अपने आप को दे दिया है, लेकिन फिर भी यदि गति तीव्र नहीं है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ चीजें जुड़ गई हैं। पूरी तरह मैं अपने आप को 5 वर्ष, इसके लिए समर्पित होने की जरूरत नहीं है, हम जहां पे भी हैं अपने हर चीज को श्रीमत के अनुरूप, बाबा के आज्ञा के अनुरूप। बाबा ने कहा ना आज भी मुरली में, अवज्ञा ना करो बाबा की। अब तक भले छोटी मोटी अवज्ञाएं होती रही हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है कि बाबा की हर आज्ञा का मैं पालन करूं? 5 साल अपने लक्ष्य के लिए, 5 साल पूरी तरह बाबा के लिए। वैसे तो कोई नहीं कह सकता कि अगला पल क्या होगा, आने वाला सूर्य, कल का सूर्य हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन 5 साल मैं अपने लिए पूरी तरह तैयारी के लिए बाबा को अर्पित करूं, हो सकता है? क्योंकि डेट फिक्स करना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग ना तो इसीलिए ढीले हो जाते हैं कि अभी तो समय पड़ा हुआ है ना, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब होगा, अभी कोई आसार कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे आसार और लक्षण अब दिखाई देने लगे हैं, बट स्टिल कई बार हम अलबेले इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने लिए समय निर्धारित नहीं करते और ये सोच लेते हैं कि हमें यहीं रहना है, यहीं आनंद लेना है, जाना नहीं है। जाना तो है ना, या यहीं रहना है, चलना है, चलना है। इसीलिए डेट फिक्स, अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और साथ साथ उसके लिए प्लानिंग आप खुद कीजिए। कोई बना बनाया प्लानिंग आपको दिया जाए उसमें मजा नहीं आएगा। खुद प्लानिंग कीजिए, मुझे इसके लिए क्या क्या करना है, बाबा ने सब स्पष्ट किया है। लेकिन एक चीज पे मैं आपका ध्यान खास खिंचवाना चाहता हूं कि कैसे हम अपने आप को जागृत रखें। मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है ना इस चीज में, कि कैसे हम लगातार अपने ध्येय की ओर बढ़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कई बार वो भूल जरूर जाता है। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, धुन लगाएं। हम एक धुन की जरूरत है, अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। आपने देखा होगा स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, बच्चे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं, नो नेट नो क्रिकेट, नो टीवी नो मूवी, कुछ नहीं, इतना अपने लक्ष्य के लिए धुन, मुझे करना है, मुझे बनना है, मुझे क्लियर करना है। ऐसी धुन है हमारे पास, इतना ऊंचा हमारा गोल है, सारे विश्व की बादशाही लेने के लिए हम निकल पड़े हैं, सारे विश्व को बदलना चाहते हैं, अपने आप को श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनाना चाहते हैं, ऐसी समर्पणता है। वो बच्चे 14 घंटे 16 घंटे स्टडी करते हैं एक जन्म के लिए, क्लियर करने के लिए अपने एग्जाम को। हम क्या इतना वक्त अपने आप को देते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए? बाबा तो 8 घंटे ही योग के लिए कहते हैं। हम इतना अपने आप को डेडिकेट करते हैं? पूछना है, ये एक आत्म जागृति का विषय है। एक है हम खुश हो जाते हैं कि नहीं हम ही बस बनने वाले हैं, हम ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, खुश होना भी हमें चाहिए, लेकिन क्या सचमुच उसके लिए कुछ किया जा रहा है, ये प्रश्न है। इसीलिए अपने आप को अर्पित करें, एक धुन लगाएं। देखिए कब संपूर्णता आए, दीदी ने धुन लगा दी थी ना, घर जाना है घर जाना है घर जाना है। दादी ने धुन लगा दी थी ना, कर्मातीत बनना है। दादी इनको कुछ बोलिए, दो शब्द बोलिए, कर्मातीत बनना है। दादी कुछ आशीर्वचन दीजिए, कर्मातीत बनना है। धुन, इसको कहते हैं धुन, और कुछ नहीं, बस वो धुन धुन धुन। सोते जागते उठते बैठते क्या मेरे भी चिंतन में मेरे मनन में यही चीजें हैं कि ये मेरा गोल है, इसको मुझे अचीव करना है? है क्या इतना मैं डेडिकेटेड हूं अपने लक्ष्य के प्रति? अन्यथा तो यही कहा जाएगा कि लक्ष्य तो है लेकिन उसके लिए समर्पणता नहीं है, यही कहेंगे ना। इसीलिए अपने आप को पहली चीज समर्पित करें, धुन लगा दें। जब तक धुन नहीं होगा तब तक वो लक्षण नहीं आएंगे, जब तक धुन नहीं होगा तब तक वो तीव्रता नहीं आएगी। इसलिए धुन लगाएं, उठते बैठते सोते जागते वो चीज मेरे जेहन में अब होनी चाहिए। जब 5 साल की हम बात कर रहे हैं तो वो 5 साल ऐसा होना चाहिए, केवल वही मेरे सामने हो, उसके सिवाय और कुछ नहीं। हो सकता है, हो सकता है, विचार कीजिएगा। गंभीर विषय है लेकिन मुझे लगता है आवश्यक विषय है, क्योंकि जब तक इस चीज को अंडरलाइन नहीं करेंगे ना तब तक वो ढुलमुल 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 चलते रहेंगे, तब तक वो परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो जो बाबा हमसे चाहते हैं वो चीज दिखाई नहीं देगी, और संसार भी जो हमसे चाहता है वो हम नहीं बन पाएंगे जब तक ये ढुलमुल ढुलमुल वाली चीज रहेगी। बहुत हुआ ना, अब तो अर्पित करें, 5 साल याद रखना इस चीज को और विचार भी करना। तो पहली चीज हमें अर्पित करना है, धुन लगानी। और धुन कैसी? एक बार एक युवक पहुंचा एक संत के पास, कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने। वो संत उसको नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे वॉकिंग करते करते थोड़ा सा और अंदर ले गए, उसका सिर पकड़ा और पानी में डुबा दिया, फिर बाहर निकाला, फिर पानी में डुबा दिया, फिर बाहर निकाला, फिर पानी में डुबा दिया। वो जैसे तैसे वो युवक अपने आप को छुड़ा के भागा वहां से। वो संत ने कहा, अरे इधर आओ, तुमको तो भगवान से मिलना था ना, कहां भाग रहे हो? उस युवक ने कहा कि प्रभु, मैं तो जीते जी भगवान से मिलना चाहता था, आप तो मुझे मार के भगवान से मिलाना चाहते हो, मुझे अभी जिंदा रहना है। तो संत ने कहा कि मैंने जो किया उसके पीछे एक मर्म था। मेरे नजदीक आओ, मैं बताता। जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर डुबा दिया था तो तुम्हारी चिंतन में क्या था? क्या तुम्हें अपना घर याद आ रहा था? अपने माता पिता याद आ रहे थे? अपनी पढ़ाई या अन्य बातें याद आ रही थी? बोला, नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा था। तो क्या याद आ रहा था? तो उसने कहा, बस मुझे हवा कहां से मिले, ऑक्सीजन कैसे मिले, प्राण वायु कैसे मिले, बस मेरे जेहन में यही था, कैसे हवा मिले, कैसे हवा मिले, बस एक ही चीज मेरे जेहन में थी। उन्होंने कहा, बस यही मर्म है। जिस दिन तुम्हारे संकल्प में केवल एक ही धुन, एक ही बात रहेगी कि मुझे ईश्वर को पाना है, तो संसार की कोई भी ताकत तुम्हें ईश्वर से मिलने से नहीं रोक सकती, रोकते तुम खुद। ठीक वही चीज जब हमारे जेहन में एक ही धुन रहेगी कि मुझे अपने ध्येय को पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, तो क्या कोई और रोक सकेगा हमें? रोकता कौन है? हम स्वयं रोक लेते हैं कि अभी अभी है ना वक्त, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा इस चीज का भी टेस्ट ले लिया जाए। आखिर अनुभव तो हर चीज का होना चाहिए ना। हम बहुत सारे तर्क अपने आप को देते रहते हैं, राइट? क्योंकि सेवा में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, और ये सब लेते लेते हमारा जो मेन गोल है भूल जाते हैं। इसीलिए पहली चीज धुन, धुन, धुन। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, इसी एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो। हाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे हम अपने गोल को अचीव करें, कैसे लक्ष्य तक पहुंचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड, चैलेंज। इसको एक चैलेंज की तरह लो, एक चुनौती की तरह लो। चुनौती कैसे कार्य करता है? हमारी अंदर की शक्तियों को यह जागृत करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको यह कहा जाए कि आप एक मैदान में पहुंच जाओ और उस मैदान में आप अकेले हो, आपको इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक दौड़ के पहुंचना है, आप अकेले हो, आप दौड़ेंगे तो आपकी स्पीड कैसी रहेगी? कोई नहीं है, केवल आप दौड़ रहे हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अब वहां 10 लोगों को खड़ा कर दिया गया एक कॉर्नर पे और कहा गया इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपको दौड़ के जाना है, और जो सबसे पहले पहुंचेगा उससे अव्यक्त बाप दादा मिलेंगे और अव्यक्त बाप दादा अपने हाथ से उसे ट्रॉफी प्रदान करेंगे, अपने हाथ से उसे टोली खिलाएंगे और बहुत सुगंधित फूलों की माला भी उसे पहनाएंगे। तो क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसी स्पीड से आप दौड़ेंगे कि आपने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इतनी तेज गति से आप भी दौड़ सकते हैं क्या। होगा या नहीं होगा? पहली कंडीशन में आप अकेले दौड़ रहे हैं, कोई गोल ही नहीं है। अब यहां 10 लोग खड़े हुए हैं और एक सुंदर सा इनाम भी आपके लिए है, आप अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। आपकी गति में अंतर आया या नहीं आया? इसलिए आया क्योंकि एक गोल भी है और साथ ही आपने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है कि मुझे विन करना है, बाबा से प्राइज लेने हैं, बाबा से पर्सनल मिलना है। होगा या नहीं होगा? चैलेंज, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को एक चुनौती के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। ये मेरे लिए चुनौती है और मैं ये करके ही दिखाऊंगा, कोई करे या ना करे। कई बार ये होता है कि हम दूसरों को दौड़ते दौड़ते, दौड़ तो हम सभी लोग रहे हैं ना, दौड़ते दौड़ते अपने अगल बगल वालों को देख लेते हैं। आपने देखा है कभी जो धावक होते हैं वो अगल बगल वालों को देखते हैं? 100 मीटर के, 400 मीटर के रेस में कोई दौड़ रहे हैं धावक, अगल बगल वालों को देखते हुए दौड़ते हैं, ये पूछते हुए दौड़ते हैं कि भाई आज नाश्ते में तुमने क्या किया, परिवार में और कौन कौन है, आगे तुमको लाइफ में और क्या करना है, या तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कौन सी दुकान से तुमने खरीदी है, मैं भी रेस पूरी होने के बाद वहां जाऊंगा। ऐसे बात करते करते दौड़ते हैं। रेस मतलब केवल उनका ध्येय उनको दिखाई देता है, चैलेंज है, मुझे विन करना है। ऐसे क्या मैं केवल अपने आप को और अपने ध्येय को देखते हुए दौड़ रहा हूं, या अन्य लोग भी मेरे आसपास शामिल हो गए हैं, मेरी नजर में शामिल हो गए हैं कि ये भी तो नहीं करता है, इसको तो इतने साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए, इसके पास भी तो ये चीज है। ऐसा एक्सक्यूज तो नहीं देते। बाबा कहते हैं यदि चलाते रहेंगे अभी तो अंत में चिल्लाना पड़ेगा। जब दूसरे को प्रजापद मिलेगा तब तो बाबा से आप ये नहीं कहोगे कि बाबा इसको प्रजापद दिया है, मुझे भी प्रजा का पद दे दो। कहेंगे बाबा ये दास बन गया है, इसे मेरा बड़ा प्रेम है, मुझे भी दास बना दो। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, बाबा वो भले प्रजा में गया लेकिन मुझे तो महाराजा बनना है, हम यही कहेंगे ना। इसीलिए देखना नहीं है, चैलेंज, अपने लक्ष्य को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़े। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैंने जो ध्येय बनाया है उसे मैं अचीव करके रहूंगा, ये मेरा अपने ऊपर पहले विश्वास हो। कई बार पुरुषार्थ में जब अप एंड डाउन होता है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि लक्ष्य तो मैंने इतना ऊंचा बनाया है, बनना तो मुझे ये है, लेकिन अभी वर्तमान अपनी स्थिति को देखकर, अपने पुरुषार्थ को देख के लगता नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा, लगता नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। और ये डाउट, बहुत अच्छा एक मैसेज आया था, विश्वास में दो शब्द हैं, विश और आस, दोनों हैं, विश भी है और आस भी है। अब आपके ऊपर है कि उस विश्वास से आप क्या लेते हो, विश लेते हो या आस लेते हो। यदि विश ले रहे हैं अर्थात अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि यदि मुझे खुद पे भरोसा नहीं है तो फिर मेरी हार निश्चित है, निश्चित है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जो प्लेयर्स अपने अनुभव में यह सुनाया करते थे कि जब कभी हम इस विश्वास के साथ मैदान में उतरते हैं कि हमारी जीत निश्चित है तो हम जीत कर वापस आते हैं, और जब कभी हम थोड़ा सा भी डाउट लेकर के मैदान में जाते हैं कि पता नहीं आज क्या होगा, मेरी जीत होगी या हार होगी, तो जब हमारे अंदर डाउट होता है तो निश्चित रूप से हम हार के वापस आते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स के ये एक्सपीरियंस है। सेरेना विलियम्स आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद अली आपने नाम सुना होगा, ये अपने इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और ये बात 100% सही है। मेरा खुद के ऊपर विश्वास मुझे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, और मेरा खुद के ऊपर डाउट मुझे नीचे गिरा देता है। इसीलिए विश्वास करें, भले ही हलचल की स्थिति हो लेकिन मैं कर सकता हूं, आई कैन, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा, मैं प्राप्त करके रहूंगा, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। उनके साथ तो भगवान नहीं है, वो अकेले ही जब इतने ऊंचे ऊंचे गोल को प्राप्त कर लेते हैं, हमें तो भगवान ने यह गोल दिया है ना, भगवान ने हमें कहा है कि तुम्हें यह बनना है, तो केवल ये मेरा व्यक्तिगत गोल नहीं है, इस गोल के साथ भगवान की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, उनका आशीर्वाद भी जुड़ा हुआ है। तो मेरी सफलता में डाउट हो सकता है, बाबा ने कहा सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाने के बाद, थोड़ा सा पुरुषार्थ में नीचे ऊपर होने के बाद, थोड़ा सा विघ्न आने के बाद, हम अपने ऊपर डाउट ना करें। ये डाउट विष का काम करके हमें नीचे गिरा देता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी बच्चे से कहा गया, एक क्लास में होमवर्क दिया गया और कहा गया कि तुम तीन सबसे सुंदर लाइनें लिखो। तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, तीन लाइनें उसने लिखी थी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं हार नहीं सकता। कितनी सुंदर बात है ना? और इसी से जुड़ी हुई अगली बात, फोर्थ, अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते रहें।
नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस देते रहो देते रहो देते रहो। और आत्मविश्वास में यह भी, विश्वास की बात जहां तक है, उसमें अपनी पीठ खुद थपथपाते रहो कि शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, आगे बढ़ो। कोई यदि नेगेटिव सजेशन दे भी तो, फोर्थ बात जो मैं कह रहा था, अपने आप को पॉजिटिव सजेशन, क्योंकि नेगेटिव सजेशन देने वाले भी बहुत सारे होते हैं, होते हैं होते या नहीं होते, ये कहां तू नहीं कर सकता ऐसा, कोई बना है क्या अभी तक, ब्रह्मा बाबा को भी 32 साल लग गए थे, इतना लंबा समय लगा था, हमारी दादियों ने कितनी साधना की थी, तुमको क्या लगता है कि बस तुम 5 साल में कर लोगे, ये बेकार की बात है। कहने वाले कहेंगे या नहीं कहेंगे, या सुबह बहुत जल्दी हम उठ के तपस्या करने लगे हैं, या मौन रह करके साधना करने लगे हैं, तो भी बोलने वाले बहुत होंगे कि बहुत बहुत आए तपस्या करने वाले, साधना करने वाले मौनी बाबा, हा? देखते हैं कितने दिन करते हैं। कहने वाले कहेंगे, आपको आपके लक्ष्य से भी भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी नेगेटिव बातों को अपने अंदर ना लें। एक हॉस्पिटल के बाद बहुत सुंदर 4 लाइनें लिखी थी, 4 लाइनें ये थी। पहली लाइन थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक चूहे ने काटा था, एक दिन उसका इलाज किया गया, वो ठीक होके चला गया। दूसरी लाइन लिखी थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक बिल्ली ने काटा था, 3 दिन उसका इलाज हुआ, ठीक होके चला गया। तीसरी लाइन लिखी थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, कुत्ते ने काटा था, 14 दिन उसका इलाज हुआ, ठीक होके चला गया। चौथी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो लाइन ये थी कि इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक आदमी ने काटा था और वो अभी तक अंदर है, मतलब वो ठीक होके बाहर जा ही नहीं पाया। आदमी ने काटा मतलब आदमी अपने दांत से नहीं काटता, अपने नेगेटिव सजेशन से काटता है, अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर डालता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है, अरे किसी ने नहीं किया है, छोड़ो, कहां तुम 2 बजे उठ करके योग करने लगे हो, कहां तुम ये सब करने लगे हो, नहीं होने वाला है, आराम से चलो, बाबा ने तो सहज राजयोग कहा है, तुमने मुश्किल राजयोग इसे क्यों बना दिया। सबके अपने अपने एक्सप्लेनेशन होते हैं, राइट। तो लोग अपने नेगेटिव सजेशन डाल करके आपके मार्ग में बाधा जरूर डालेंगे, इसीलिए फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को एक पॉजिटिव सजेशंस लगातार देते रहना कि मुझे अचीव करना है, मुझे बनना है, मैं करके रहूंगा। और बाबा कहते हैं कि तुम कल्प कल्प के विजयी हो, कल्प कल्प तुमने ही किया है और इस बार भी तुम ही करोगे। बात यह होती है कि लोगों की बात हमारे अंदर जल्दी फिट हो जाती है, भगवान की बात बाद में, और कई बार फिट ही नहीं होती है, बहुत बाद में याद आती है, होना उल्टा चाहिए ना। भगवान जो सत्यता के सागर हैं, सत्य है, ट्रुथ है, उनकी बात को हम यहां फिट कर लें, लोगों की बातों को नहीं। और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के। जितना ज्यादा हम अच्छे अभ्यास करेंगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई में लगे रहेंगे, जितनी ज्यादा योग साधना करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतनी ज्यादा हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। परिश्रम, सतत परिश्रम, इसमें हारे नहीं, इसमें थके नहीं कि आखिर कब तक हम करेंगे, कब तक नहीं। पेशेंस रखते हुए, धैर्यता रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे। यदि हम बढ़ रहे हैं तो बाबा की मदद हमें मिलेगी, यदि हम बैठ गए हैं तो मदद वो देना भी चाहे तो। कई बार होता है ना, किसी को उठाने की कोशिश करो तो फिर से वो बैठ जाता, फिर खींचो फिर बैठ जाता, फिर खींचो फिर बैठ जाता है। तो ऐसे बैठ ना जाए कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, नहीं। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही, अपने लक्ष्य की ओर तेजी से उड़ो, यदि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो स्क्रॉल करो, अर्थात जैसे होता है ना, घिसट के भी चलो लेकिन चलते रहो, चरैवेति, चलते रहो, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और पेशेंस जरूर रखें, कई बार हम अपने धैर्य को खो देते कि आखिर कब ऐसा होगा, कब वो नजारे दिखाई देंगे, कब वो परिवर्तन आएगा, या कब हम ऐसा बन पाएंगे।
धैर्य रखें।
धीरज, बाबा ने कहा सब्र का फल बहुत मीठा होता है। एक बंदर था, उस बंदर आम खाने के लिए एक बगीचे में गया। अब माली ने उसको मारा खूब और मार पीट के भगा दिया, तो बंदर को लगा कि ये माली क्या समझता है अपने आप को, क्या मैं पेड़ नहीं उगा सकता, मैं भी आम का पेड़ उगा सकता हूं। उसने आम की गुठलियां ले आई और एक जगह पे गड्ढा करके उसे दबा दिया। अब दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, उसमें से कुछ निकला ही नहीं। तो उसने फिर से उसको खोदा, निकाल के देखा कि बीज है भी अपनी जगह पे या नहीं है। बीज तो अपनी जगह पे था, फिर से उसको रखा, फिर से दबा दिया। फिर से तीन दिन चार दिन हुए, कुछ निकला नहीं। फिर से उसने गड्ढा खोदा और फिर से बीज को निकाल के देखने लगा कि अरे कुछ निकल क्यों नहीं रहा है। यदि बार बार वो इम्पेशेंट होगा, बार बार उस बीज को निकालता रहेगा उस गड्ढे से, तो क्या वो अंकुरित होगा? धीरज रखना होता है। इसीलिए ध्येय बना करके अच्छी प्लानिंग के साथ, इन सब बातों के साथ हम तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन यदि कुछ उतार चढ़ाव आ भी रहा है, धीरज रखें, अपने पुरुषार्थ में रुकावट ना आने दें। क्योंकि विवेकानंद जी की बात, वो कहा करते थे जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते। अब ध्येय के प्रति ऐसी समर्पणता हमें भी अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है कि हम जागें, सोए ना रहें। कई बार आलस्य और अलबेलेपन का चादर ओढ़ करके हम सो जाते हैं कि चलता है, वक्त अभी है हमारे पास, लेकिन है नहीं। वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है और हमें वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं यदि समय ने तुम्हें तैयार किया, समय यदि तुम्हारा टीचर बना, तो क्या होगा, क्या होगा, सारा क्रेडिट समय को मिल जाएगा ना। इसलिए हम समय से पूर्व अपने आप को तैयार करें और तैयार करके सारे संसार की सेवा करें ना। सारा संसार हमारा इंतजार कर रहा है, बाबा भी हमारा वतन में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 69 से लेकर के बाबा अब तक ऊपर बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। भक्त आत्माएं भी हमारा इंतजार कर रही हैं। कर रही हैं या नहीं? बाबा ने खुद कहा कि भक्तों की आवाज बाबा के कानों में तो आती है, पता नहीं तुमको क्यों नहीं सुनाई देते। कहा ना बाबा ने ये, तो भक्त आत्माएं भी हम इष्ट देव देवियों का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे इष्ट हमें साक्षात्कार कराएंगे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। एडवांस पार्टी की भी आत्माएं हमारा इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे साथी आएंगे और हम सब साथ साथ चलेंगे। प्रकृति भी खुद को पावन बनाने के लिए हमारा ही इंतजार कर रही है। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें अपने आप से पूछना है, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? बाबा के ही महावाक्य हैं बच्चे, इंतजार मत करो, इंतजाम करो, इंतजाम करो। ऐसा ना हो कि कुछ भी अचानक होना है ना सब कुछ, और उस अचानक में हमें वक्त नहीं मिल पाएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमें वक्त मिलता। इसीलिए उस समय रोने की बजाय, उस समय पश्चाताप करने की बजाय, क्यों ना आज से हम पूरी तरह जागरूक हो जाएं। किस चीज के लिए? स्पष्ट कीजिएगा, लक्ष्य क्या मेरा स्पष्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे पास क्या क्या प्लानिंग है, और 5 साल, इस 5 साल में मुझे अपने आप को कंप्लीटली तैयार करना है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। एक विचार दे करके जा रहा हूं, बाबा बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे जब इस बार मिलन के लिए आएंगे तब भी, और ऊपर बैठे भी बाबा बहुत प्रसन्न और आनंदित होंगे यदि हम सब अपने आप को पूरी तरह लक्ष्य के लिए समर्पित कर दें और धुन लगा दें कि बाबा पूरे 5000 साल तो हमारे हैं, इसमें से हम ये जो 5 साल हैं, आज से लेकर के आने वाले 5 साल, हम पूरी तरह आपको और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अर्पित करते हैं। ये हमारे लिए, सारे संसार के लिए, पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। इस पे विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति।